अब हम चलते हैं आयत नंबर 63 और 64 पे इकट्ठे, आप मेरे साथ रहिएगा, हल्का सा हम इसका खुलासा करते हैं। वैस अखजना, और जब हमने लिया, अखजा युखिजु पकड़ने को कहते हैं, क्या लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता अहद, मिसाक लस वसक से है, वाओ साकाफ, विसाक कहते हैं उस रस्सी को जिससे ऊंट को बांधा जाए, यहां मुराद है अहद, प्लेज के मानों में, जब हमने तुमसे मिसाक लिया। उर्दू में आप बोलते हैं, ये बात बड़े वसूक से कह रही हूं, वही चीज है इसमें भी, वरफाना फो का कुमतूर, और हमने बुलंद कर दिया तुम्हारे ऊपर तूर को, यानी हमने तुम्हारे ऊपर तूर को खड़ा कर दिया, खुजू मा तैनाकुम। अच्छा, रफाना का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं रिफत, रफा वही लफ्ज है, ये खड़ा कर दिया तुम्हारे ऊपर, फोक का लफ्ज पीछे इसको अपोजिट पड़े, कोई बताएगा आप में से, तहत, फोक का अपोजिट तहता, नीचे वाला। अब तूर क्या है, देखिए यहाँ तूर खाली होता ना अगर अल की बजाय, तो कहते हैं सब्ज पहाड़ को, ग्रीन माउंटेन, लेकिन अल लग गया तो इससे मुराद खास तौर पे वो पहाड़ है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के साथ कलाम होता था, और वही जो वादी तीम में हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ये वही चीज है। उसके बाद देखिएगा वराफान फोका को मतूर, और कहा क्या, इसको लिखिएगा खुजू, ले लो पकड़ो, यानी ये किस्म का हुक्म है, ऑर्डर है, पकड़ो, क्या पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुमको दिया है, क्या दिया था अल्लाह ने इनको मूसा के जरिए, तौरात। पीछे हमने पढ़ा कि मूसा अलैहि सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पे चले गए, व इज वाद न मूसा और वही न लैलतन सुम्मत तखज़तुम अल-इजल मिन बादी वअंतुम ज़ालिमून, वही आयत है, उसकी की कंटिन्यूएशन है। जब मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर से वापस आए तो उनके पास तौरात थी, तौरात की तख्तियों पे जो लिखी हुई शक्ल थी वो वहां मौजूद थी, गुस्से में वो कुछ गिरगिरा गई। जब वो मामला रफा दफा हो गया, यानी जिन्होंने पूजा था वो याद है ना वाकया बछड़े का, अब उसके बाद कहा लाओ भाई क्या लायो, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तौरात खोल कर दिखाई तो कहेंगे ओ इट्स टू डिफिकल्ट, ये तो बड़ी मुश्किल है, हमसे तो इस पे अमल नहीं होगा। बस ये कहने की देर थी उनकी अल्लाह के हुक्म से। देखिए यहां आयत में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वरफान फौकाकुम तूर, अब रफत क्या होती है ऊपर, और फौक किधर है ऊपर, तूर किधर है पहाड़ जमीन पे, यानी लफ्जों को देखें तो पहाड़ को इधर से उठाकर इनके सरों पे मुसल्लत किया गया। इसी तरह से सूरत अल-आराफ में हम पढ़ेंगे कि वहां पहाड़ के हिलाने के साथ जलजले का भी जिक्र है, रजफा का जिक्र है। अल्लाह आलम, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, हमारा ईमान है कि अगर अल्लाह ने यहाँ पहाड़ को उनके सर पे खड़ा किया है तो किया होगा। इसकी कैफियत क्या हुई होगी, दोनों आयतों को जमा कर लें अगर सूरत अल-आराफ की और यहाँ की, तो मानी क्या बनता है कि ज़मीन हिली तो जो पहाड़ इनके इर्द गिर्द थे ना, तो उसके अंदर से जो ऊपर मोटे कंकर हैं या कुछ है वो इनके ऊपर गिरा। इसी तरह जुल्ला के मलफ्स भी आएंगे, वहाँ के साइबान था, अल्लाह के लिए क्या बड़ी बात है, जिसने बादलों को बगैर सहारों के खड़ा किया हुआ है, क्या इन पहाड़ों को ऊपर उठा नहीं सकता। और कुरान में आप पढ़ेंगे कि पहाड़ चल रहे हैं जैसे बादल चलते हैं, लेकिन तुम्हें ये ठहरे हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी, पकड़ थी, कहा कि पकड़ो, यानी आप कह सकते हैं अपनी जुबान में, बाज लोग कहते हैं क्या ये गन पॉइंट पे नहीं उनसे तौबा कराई जा रही, या उनको जबरदस्ती मजबूर तो नहीं किया जा रहा, तो अल्लाह ताला कहते हैं खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो कुव्वत से जो हमने तुमको दिया, मुराद है कि तौरात के अहकामात पे अमल करो, वस्कुरु माफी हिलाल लकुम तत्तकून, और नसीहत पकड़ो या उसको लेकर चलो जो कि हमने तुमको दिया ताकि तुम बच जाओ। अब आप सोचिए एक कौम है पहाड़ों के बीच में रह रही है, किताब का इनकार कर चुकी है, इतने में वो पहाड़ हिल के उनके सर पे आते हैं तो क्या कहा होगा उन्होंने, यानी जिक्र आगे भी आएगा पीछे भी जा चुका है, क्या कहते हैं इन्होंने, ओ समय ना व सही ना, फौरन मान गए। हालांकि इनकी अपनी किताब में अगर आप देखें ना तो इन्होंने क्या कहता है, शमेना व अशैना, यानी हिब्रू जुबान में उसका मानी कहता कि सुन लिया और मानेंगे, अरबी जुबान में अशैना जब असैना से मिलता है नाफरमानी की, लेकिन सही बात क्या समझ आई कि कोहे तूर जब ऊपर देखा तो सब मान गए, और रवायतों में आता कि सजदे में गिर गए और एक आंख से ऊपर देख रहे हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, और इसको रफाए अजाब का सजदा कहकर आज भी मनाते हैं। यानी यहूद सजदा उस तरह नहीं करते जैसे आप और मैं करते हैं, या करते भी होंगे अगर इस तरह का, तो एक खास सजदा यूं झुक के तो यूं देखते हैं ऊपर कि वो पहाड़ हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा। कुछ अरसा सर्रा सुम्मा तवल्लई तुम इन बात ही जालिका, फिर तुम सारे ही फिर गए इसके बाद। किसके बाद? इस वाक्य के कुछ अरसे के बाद। फलाउल फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, फिर अगर तुम पर ना होती अल्लाह की रहमत और उसका फजल, लकुन तुम मिनल खासरीन, तुम तो खसारा पाने वालों में हो जाते। अब ये वाक्य है, इस पे बहुत सारे कलाम है लोगों को, कलाम समझते हैं, एतराज आते हैं, कहते हैं लो जी एक तरफ तो कहा जा रहा है ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो दूसरा ये जबरदस्ती नहीं ज्यादा की जा रही, यानी जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये कोर्ट्स में हम पर ज्यादा सख्ती नहीं की जा रही, हमारे ना है हमारा फैसला, इनको क्या लगे, वाकिफ ना लगे अगर कोई मोहब्बत ना हो, प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए एक बंदा भूखा सो जाए आपके घर में रहता हुआ तो आपको चैन आएगा? तो एक बंदा एक बुरे सबक से भूखा सो गया और अगले सबक में आके आ तो वो कैसे लेगा? मैं तो ऐसी उस्ताद नहीं अपने आप को समझती कि मैं आराम से बैठी रहूं, मुझे अक्सर वो लोग याद होते हैं जो कल के लेसन में नहीं थे, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि इन्होंने अगर अपने आप को पिछले सबक से जोड़ा हुआ नहीं है तो इनको आज का मेरा सबक तो समझ ही नहीं आएगा। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा क्या है कि ये ज़बरदस्ती नहीं थी। देखिए कि यहाँ बाज़ लोगों का ये सवाल कि जी क्या ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, तो देखिए अल्लाह के साथ बंदे के ताल्लुक के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। आप माँ के साथ समझिए, माँ के बच्चे के साथ ताल्लुक कैसा होता है, कभी प्यार करती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी उसकी तरबियत करती है, कभी डांटती है ना। माँ को पता होता है इस वक्त इस बच्चे से कैसे बोलना है। इसी तरह आप देखिए उस्ताद है, उस्ताद को साफ पता होता है कि किस शागिर्द के साथ मेरा कैसा मामला होना चाहिए। कभी उस शागिर्दों की बड़ी बड़ी बातों पे हंस देता है बंदा, इट्स ओके कोई बात नहीं अभी बच्चे हैं ठीक हो जाएंगे। कभी उनसे मोहब्बत इतनी होती है उनकी बड़ी से बड़ी बदतमीजियां भी अजीब नहीं लगती, और कभी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, कभी बात करने को दिल नहीं करता। एक जिंदा ताल्लुक जो होता है ना उसमें क्लाइमेक्स होता है, डायनामिज्म होता है, कभी कुछ। अब हर वक्त माएँ बच्चे को गोद में उठा के बैठी रहे तो क्या होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अगर सारा दिन ही उनको डांटते रहे तो करते रहे तो वो बदतमीज हो जाएंगे। अल्लाह ने यहाँ किन के सर के ऊपर पहाड़ मुसल्लत किया? क्या ये रिवॉर्ड्स थे, न्यू मुस्लिम थे? इतने मोजज़े देखकर आए मैं, यानी आप देखें ना जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं हजार बार तुम्हें समझाया तुम्हें समझ नहीं आती। देखो फिरौन के गुलाम थे, उसको डूबता देखा, वादिय ती में अल्लाह ने तुम्हारे सामने इतने काम रखे। रिवायत में आता है कि इन्होंने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा जाओ अब हमारे लिए कोई अल्लाह से नसीहत नामा लाओ, क्योंकि हम तो गुलाम रहकर हमें तो पढ़ने लिखने का वक्त ही नहीं मिला, हम कुछ सीखना चाहते हैं। ये पूरी कोटेशन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूँ। कहते थे कि हमारी तरबियत के लिए कुछ करो, तो जब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से इनकी तरबियत के लिए इतने मुजाहदे किए तो इतनी नाशुक्री कौम, और वल्लाह ही लोग ऐसे ही ना शुक्रे होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज भी दुनिया के कई खित्ते हैं जो तरस रहे हैं कि अल्लाह का दीन वहाँ पहुँचे या लोग बैठकर एक माहौल में सीखें, और आप ज़रा किसी जगह कोई क्लास तो शुरू करें, 4-10 दिन तो बड़ी बात है या कुछ साल में, ज़रा बीच में कोई आफत आ जाती है ज़ाती ज़िंदगी की, सबसे पहले लोग उस चीज़ को छोड़ते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी पर खुद गौर करूँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ पर गुस्सा आता है, जो मैं सारी बातों सारे गुस्सों को एक गुस्से में ले आऊँ ना, जब लोग दीन को हल्का समझें और दुनिया को भारी समझें। बस मैं अपने आप को इतना ही समझ सकी हूँ, तुम्हें कदर ही नहीं इस चीज़ की, तुम्हारे लिए इतना कुछ करके बैठे कहाँ। मैं देखती हूँ कई सिस्टर्स बेचारियाँ बच्चों को छोड़ के दिन में 2-2 दफ़ा घर से उनको निकलना पड़ता है, क्लास से जाके बैठती हैं तो 2 लोग हैं, 3 है, रजिस्टर्ड कितने 20 हैं 25 हैं, ये बाकी 20 किधर है, वो किसी का ये मसला किसी का वो मसला, बिल्कुल वही हालात है। उस वक्त फिर इंसान को हक पहुंचता है, कह दे कि खत्म दैट्स इट, जो 2-3 रह गए उनको हम किसी और तरह एडजस्ट कर देते हैं। क्यों? लोग कदर नहीं करते, लोग नेमतों की वैल्यू नहीं पहचानते। बनी इसराइल पर अल्लाह का गुस्सा इस वजह से था कि ये नए लोग नहीं थे। नई दुल्हन के भी लोग लाड देखते हैं, वो तो रोटी भी टूटी पका दे तो कहेंगे बड़ी प्यारी पकाई है, बट 40 साल से घर आई बेगम अगर जला हुआ खाना आगे रख दे तो मियाँ सबको गुस्सा आएगा। अल्लाह का इन पर गुस्सा बिल्कुल बरहक था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद कहकर तुमने मूसा को मांगा, अल्लाह ने इतने साल में इस मूसा को लाकर बुलाकर जब तुम्हारी जिंदगी में रखा तो अब नखरे करो, और इनका इतराज क्या था, ओहो ये तो बड़ी मुश्किल किताब है, हम तो समझे थे तो रात में बहुत आसान हुक्म होंगे, शराबें पियो जुए खेलो सूद लो दो, ये तो बड़ी मुश्किल किताब है। पर आपको तो कि तौरात बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल किताब थी, डूज डोंट्स हलाल हराम प्लस माइनस, तो ये कहते थे वी कैंट हैंडल दिस, हाउ कैन वी सर्वाइव इन द लाइट ऑफ तौरात नॉट इज, बहुत मुश्किल है आज के दौर में हम अल्लाह की बात लेकर चलें, तो अल्लाह कहता है मारो इनके सर पर पहाड़ को। रह गई बात लाइक रहा फिर दीन, तो वो तो किसी को इस्लाम में लाने के लिए, ये कोई इस्लाम में नहीं लाए जा रहे थे। देखिए आप इस मुल्क में रहते हैं तो आपको यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे। हाँ आपको नॉर्वे हुकूमत बिल्कुल मजबूर नहीं करती कि आप इधर रहें, या आपको उन्होंने कोई लेटर भेज के तो नहीं बुलाया था, आपके किसी प्यारे ने आपको बुलाया होगा या किसी भी तरह आप आए होंगे ना। हुकूमत कहती है नहीं आना ना आओ, हम तुम्हारे बगैर बहुत खुश हैं, बट एक दफ़ा तुम इधर आ गए हो तो खुजू मा तईनाकुम बिकुवा। ये खुजू मा तईनाकुम में सारे कानून सारे लॉज सारी बातें नहीं आती जो किसी मुल्क की होती हैं। आप इस नॉर्वे के लॉ की कोई चार बातें मान लें और एक ना माने, रहने देंगे आपको इधर? आप कहते हैं बस मेरा दम घुटता है, मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधनी, प्लीज नॉर्वे हुकूमत वाले प्लीज मुझे इस पे ना पकड़ना। चार छह दफा जब आपको टिकट मिलेगा, सातवीं दफा पहले टिकट बेल्ट बांधेंगे फिर गाड़ी में चाबी लगाएंगे। ये इंसानों की आदत होती है, तो अल्लाह ने यहाँ प्यार के साथ उनको पकड़ा है। और ये इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड था। एक दूसरा मफहूम भी लिखिएगा, जब कोई नॉन सीरियस होता है ना, देखिए कई लोग मुखलिस होते हैं, आप में से भी सभी ऐसे होंगे इंशाल्लाह, बहुत मुखलिस होते हैं, तभी तो दीन सीखते सिखाते हैं ना, तभी तो दीन की खिदमत के लिए यहाँ आते हैं ना। बट नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, तो अल्लाह ताला ने इनको डांट देकर इनके एटीट्यूड को सीरियस करना चाहा। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे कि ये छोड़ दें, ये निकल जाएं, अल्लाह ताला कहते थे ये सीधे हो जाएं, इन कुर्सियों पे यही बैठे रहे तो अच्छे हैं, लेकिन आखिर कब तक? आपको पता है दुनिया की जुबान में वार्निंग्स आती हैं, एक आती है दो आती है, फिर उसके बाद आपकी कुर्सी उठाकर दूसरे की कुर्सी वहां रख दी जाती है। अल्लाह ने भी बनी इसराइल को मौके दिए, मोहलत दी, उसके बाद उनका तख्ता उठाया और उम्मत मुस्लिमा को वहां पे बुला दिया। और यहाँ खुजू मा तईनाकुम बिकुवा पे अपने ऊपर भी लीजिए, दो दफा यह आयत आएगी, एक जगह यहाँ आ रही है कहीं और आएगी, लेकिन है दो जगह, पकड़ो ये आपके मेरे लिए भी है। हर तरह के हालात में इस किताब को पकड़ो। कुव्वत से पकड़ना क्या है कि पकड़ लिया और गिरेगी तो आटा देंगे वजन का तोल के? आज तो एक चिप के ऊपर 10 कुरान आ जाते हैं तो आप क्या एक छटांक आटा देंगे कुरान गिरने पे? नहीं, हर हाल में पकड़ो। जिस दिन आपका छुट्टी को दिल करे, वल्लाही मुझे भी ये कह दें, मैं अपने ऊपर भी इसको ही लेती हूँ, मेरा जिस वक्त भी दिल करेगा छुट्टी करने को, या मुझे लगेगा मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, तो मैं इस आयत को अपने सामने रख लूँ। आप इसका एक बुकमार्क बना के अपने कुरान में रख लें। बिकुवा के हर किस्म के हालात में पकड़ो, मौसमों की शिद्दतों में पकड़ो, जिंदगी के मुश्किल में आसानियों में पकड़ो, इसको थामो। ये अल्लाह ने तुम्हें एक तोहफा दिया है, हाँ बस करो माफी ही। ये अगला दर्जा है। देखिए एक होता है याद करो बस करो में, और एक होता है याद कराओ, यानी रिमेंबर और मेंशन। यहाँ बहुत खूबसूरत नुक्ता है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ सकें तो बहुत इंजॉय करेंगे। वो क्या है कि अल्लाह सुबहान ताला ने एक बिगड़ी हुई कौम को बताया कि तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी सिक्योरिटी किस बात में है। फर्स्ट स्टेप, खुद इस किताब को पकड़ लो। देखिए ना, पहाड़ पे कोई चढ़ रहा है, अंधेरा है, इतने में उसका पाँव फिसलता है तो नीचे गिरेगा ना। कोई दूसरा शख्स फौरन लाइट जला के आपको कहता है ठहरो ठहरो इधर ही रुक जाओ, अच्छा ठहरो जरा सा पाँव लेफ्ट पे करो भाई, और फिर वहां पाँव रखो, तो आप दुआ देंगे उसको कि उसके दुश्मन होंगे? उसने आपको मजीद गिरने से बचा लिया। इसी तरह से दीन के रस्तों में वो लोग जो आपको बार बार फिसलने से बचाते हैं ना, वो आपके मुखलिस हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप पूरे इतने गिर जाएं कि फिर आप उठ ही ना सकें। जैसे बीमार होता है ना, फिजिकल बीमार, तो उसके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर माँ भाई बहन कोई भी लाड करे, अच्छा उठो तो सही, मुंह तो धो लो, अच्छा चलो दो चम्मच दलिए के खा लो, तो उसके बाद मरीज खुद को ठीक महसूस करता है, तो कहता है अल्लाह कितना शुक्र है इसने मुझे उठा के बिठा दिया, मैं तो सुबह से लेट लेट के भी थक गई थी। तो खुजू मा तईना कुव में क्या है, ये कुरान तुम्हारा सर्वाइवल गाइड है। ये कुरान वा तसिमू बि हब्लिल्लाहि जमीअन है, कल उनके लिए तौरात थी, आज हमारे लिए कुरान है। हम जिस वक्त इसको छोड़ते हैं ना, ये जुमला आप जम बना के लिख लें, तो मेरा ख्याल है बड़े लोगों को, कुरान के स्टूडेंट्स को फायदा होगा, वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहां जो जिससे भी कुरान सीख रहे, आई डोंट माइंड, लेकिन ये जुमला उनको फायदा दे सकता है। हम जिस वक्त कुरान को छोड़ देते हैं ना, उसी वक्त हमें इसकी जरूरत होती है। देखिए ऊपर से रस्सी लटक रही थी, हर वक्त तो नहीं उसको पकड़ते, कब पकड़ते हैं? जब जहाज में झटका आता है। सीट बेल्ट हर वक्त नहीं बांध रहे, लेकिन जहाज कांपने लगे तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं। जो हमारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स है ना, ये भी झटके ही होते हैं। जहाज शेक कर रहा है, इधर एयर गैप्स आ रहे हैं, क्लाउड्स में से गुजर रहे हैं, आप जरा लैंडिंग होने लगी है, हम एडवर्स हालात में इसको जब छोड़ते हैं ना, उस वक्त असल में पकड़ना होता था। मसलन गाड़ी में सीधा बैठे हुए, सीट बेल्ट बांधी है, एकदम गाड़ी ऐसे हिलने जुलने लग गई, अल्लाह ना करे टायर उसका निकल गया, तो अब सीट बेल्ट क्या सोच के खोल दें कि नहीं अब गाड़ी से कूदने में मुझे आसानी होगी, मैं सीट बेल्ट खोल दूं। तो आप कहेंगे अल्लाह के बंदे, इसी वक्त तो सीट बेल्ट का फायदा होना है कि अगर गाड़ी आगे जाकर टकरा गई तो तुम भी टकराने से बच जाओगे। जिंदगी की मुश्किलात में जब कभी मुश्किल आए तो वस्करू माफी ही, रिमेंबर, खुद भी याद रखो, चले यहां तक भी बहुत है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उम्मत मुस्लिमा में हजारों लोग हैं जिन्होंने इस किताब को कुबस से पकड़ा हुआ है, बट नेक्स्ट स्टेप नहीं है, और वो क्या है, अब इसको दूसरों से शेयर करो। जिक्र में दो चीजें क्या है, खुद पकड़ना और दूसरों से शेयर करना, मेंशन करो। क्या पता चला, तुम गिरने लगोगे, ये किताब तुम्हें थाम लेगी। दूसरों से शेयर किए बगैर ये किताब ज्यादा दिन आपके पास नहीं रहेगी, ये भी लिख लें। आप कहते हैं नहीं, हमें तो दूसरों को बताने से पहले 14 आलूम सीखने थे। आप देखिए, कोई आप में से कह सकता है, यानी मैं अपने ऊपर तो लेना ही नहीं चाहती, मुझे तो बहुत ही छिछोरा लगेगा, मैं आपसे कहूँ मैंने बहुत अमल कर लिया, मैं बहुत अब दीन वाली इल्म वाली बन गई, अब मैं आपको बताने शुरू हो गई हूँ। ये तो खुद एक किस्म का अपने ऊपर तकब्बुर और बड़ाई का या उजब का ख्याल है ना। बाज़ लोग कहते हैं ना, हम अभी नहीं दूसरों को बताते, पहले हम अमल कर लें। तो इसका मतलब कि जितने बता रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम अमल कर चुके हैं, ये किस में ताकत है। लोग कहते हैं नहीं, पहले अपना ईमान पूरा कर लो फिर दूसरे को बताना, ये धोखा है शैतान का। बस करू माफी ही बल्ली गुलौनी वाया, एक आयत ले लो, आप न्यू मुस्लिम्स का मजमा था 1 लाख लोगों का आपके सामने हज्जतुल विदा के मौके पे, और उन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम में से हर हाजिर गायब तक ये बात पहुंचा दे। हम होते, हम कहते नहीं अभी हमें इजाजत नहीं मिली, अभी तो हमने इतने उलूम सीखने हैं। तो मतलब क्या, सारी बात का खुलासा, खुद भी सीखो, इसकी तिलावत करो, इस पे अमल करो, वक्त पड़ने पे इसके अहकामात को याद रखो, इसमें गौर व फिक्र करो, इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम समझो, इससे गाफिल ना हो, इस पे तदब्बुर करो, इसके अमर और नहीं को याद रखो। तो मजबूती से थामने में क्या आएगा कि पूरी जिंदगी का इसको साथी बना लो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ, अल्लाह की नाराजगी से बच जाओ और बुरे कामों से बच जाओ और आखिरत में जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाओ। सूरत अल आराफ की आयत 171 में जो लफ्ज है, वैस नतक नल जबल फौकहुम कान्नहुजुल्ला, याद करो वो वक्त जबकि हमने पहाड़ को इनके ऊपर एक साइबान की तरह खड़ा कर दिया था। तो ये सारा कुछ करके अल्लाह ताला ने आपको मुझे ये सब बता दिया कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा। बहुत खौफनाक शक्ल सूरत पैदा हो गई थी उस वक्त, लेकिन कुछ दिन लोगों पे असर रहता है, ये भी एक बहुत सारों का प्रॉब्लम होता है। खुद से बहुत वादे करते हैं, हर रमज़ान में वादे हम करते हैं अपने आप से, हज करके आते हैं तो वादा करते हैं, या किसी बीमारी से उठते हैं तो वादा करते हैं, या किसी हादसे से बाल बाल बचते हैं ना तो वादा करते हैं, फिर क्या होता है, कुछ अरसा गुजरता है, सुम्मा तवल्लई तुम इम्बादी जालिका, जब बीमार होते हैं एक आवाज नहीं निकलती उस वक्त, ऐसे लगता है हमसे ज्यादा नेक और मुत्तकी कोई नहीं, और जब जरा आंखों में जरा ताकत आती है, जान पड़ती है, तो हम कहते हैं जरा चलाना फिल्म, आज बड़े दिन से टीवी नहीं देखा। सुम्मा तवल्लई तुम इम्बादी जालिका, इसके बाद, किसके बाद, ये वाकया देखने के बाद, फलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, फिर अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, वरहमतुहू और उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम खसारा पाने वाले में होते। सवाल पैदा होता है कि यहाँ अल्लाह का फजल इन पर क्या था, देखिए अल्लाह ने तो इनके सर पे कोहे तूर को मुसल्लत कर दिया, फजल क्या था, कि मुसल्लत तो किया था बट गिरने नहीं दिया, डराया था अपनी बंदगी से या अपनी इस दुनिया से निकाल नहीं फेंका। और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के फजल से मुराद कुरान है, इस्लाम भी है और तौबा करने की तौफीक दी, ये भी उसका फजल है। सवाल पैदा होता है कि लोग अल्लाह के हुक्म से क्यों फिरते हैं, नंबर एक इसको गैर अहम समझते हैं, दूसरी बात ये महसूस करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है हमें दुनिया में, तीसरी बात ये सोचते हैं कि इसको छोड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हालांकि नुकसान तो सामने लिखा हुआ है कि लकुन तुम इन अल खासरीन, तुम तो खसारा पाने वालों में हो जाओगे, बैंक करप्ट हो जाओगे, हलाकत तुम्हारा नसीब हो जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने यही बात सूरह ज़ुमर में भी कह दी कि वो लोग जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते, तो कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामती अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। यहाँ पे अब ये दूसरा सबक पूरा हुआ। मेरे आपके लिए इसमें अमल क्या है? अल्लाह की किताबें खेल नहीं है, कल की तौरात है या आज का कुरान है, सेम बात है। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने यहाँ सोचने का नुक्ता दिया। तुम सोचो, वो रब जो इतनी कुदरतों का मालिक है कि एक इशारे पर तुम्हारे ऊपर पहाड़ को मुसल्लत कर सकता है, तो क्या तुम्हारी नाफरमानियों पर उसकी कुव्वतें तुम्हारे खिलाफ हरकत में नहीं आ सकती? यानी गुनाह करके, मस्तियां करके अल्लाह को गुस्सा ना दिलाओ, तुम अपने ऊपर जरा इस चीज को लेकर चलो। क्या ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है आउटडेटेड है? ये क्या समझने वाली की बातें हैं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर दिन इन बातों में एक नया रंग पाया जाता है। अब यहाँ से अमली तौर पर दो वाक्यात हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा खुलासा करके आयत 65 से शुरू करूंगी। बनी इसराइल को ये सब कुछ दिया, अब यहाँ तक आप अपनी इमेजिनेशन में लाएं। तो रात आ गई, पहले जरा सी मस्ती उन्होंने की, फिर अल्लाह ने कोहे तूर सर पे मुसल्लत किया, फिर कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है अब मानेंगे, पक्के वादे कर लिए, मीसाक, पुख्ता वादा कि अल्लाह ताला जी हम हुक्म मानेंगे। अब क्या हुआ? चार चीजें बनी इसराइल के पूरे वाकयात में आपको दिखेंगी। बेसब्री, नाशुक्री, ये कहाँ देखा हमने? मनोसलवा के वाक्य में, लन नस्बिर अला तामिन वाहिद। इसी तरह दो चीजें और लिख लें, हीला साजी, बहाने करना, और दूसरी चीज क्वेश्चन करना। यहां हम एक वाक्य पढ़ने लगे हैं जो बड़ा मारूफ वाक्य है, हम मुसलमानों ने भी इसको बहुत पढ़ा है, लेकिन आज की तौरात में ये बिल्कुल गायब है। मजे की बात देखें, आज की बाइबल की तहरीफ की ये बहुत बड़ी अलामत है कि आज वहाँ बंदर बनाए जाने वाला वाक़या बिल्कुल भी नहीं आता। हालांकि कुरान पाक में ये वाक़या बहुत जगह है, यहाँ सिर्फ इशारा है। असल वाक़या ये आएगा सूरत अल अराफ में, तो मैं भी यहाँ आज इसको हल्का सा वाज़े करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सूरत अल अराफ तक जब पहुँचना है इंशाल्लाह, तब तक एक तो हमारा अपना भी समझने का लेवल बढ़ चुका होगा और इंशाल्लाह हम इसमें से ज़्यादा बातें लेंगे। अल्लाह के एक सीधे सादे हुक्म को तोड़ मोड़ कर इन्होंने अपनी मर्जी का कर दिया, ठीक है, यानी हुक्म की असल शक्ल ही बदल दी। और अगला वाक्य इसी सबक में शुरू होगा, लेकिन अगले में आप इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे, गाय का वाक्य, जिसकी वजह से शायद इस सूरत को गसूरतुल बकरा कहते हैं। इनकी हीलो हुज्जत थी। हीलो हुज्जत किसको कहते हैं? अभी नहीं, एक होता है हीला, हीला क्या आता है? बहाने बनाना। मसलन मौलवी साहब इनके पास कोई आता है, कहता है मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, बस गुस्सा आ गया था, अब क्या करूं, बच्चों का क्या होगा, बीवी का, अब मैं वापस लेना चाहता हूं, बस खत्म हो गया, जाइए जाइए, आपका घर टूटने ही नहीं। मौलवी साहब कोई रास्ता निकालें। अच्छा फिर तुम ऐसा करना, जाके अपनी बीवी से कहो कि मैंने तुम्हें तोए वाली नहीं ते वाली तलाक दी थी। तोए की तलाक वो है जो होती है, तलाक का खत्म करना, तोड़ देना, छोड़ देना, मुतलक जिसको कह ले, और ते की तलाक क्या है? लिका से, मुलाकात, यानी मैंने तो तुम्हें तोए वाली तलाक ही नहीं दी, गोया कि अब तुम्हारी तलाक नहीं हुई। इसको कहते हैं हीला साजी, अपनी मर्जी का मतलब निकालने के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ना। इन्होंने अल्लाह के सीधे सादे हुक्म को तोड़ा, देखिए अल्लाह ने भी इनकी शक्लों को मोड़ा। आइए जरा इस दो आयतों का खुलासा करते हैं। वलकद अलिम तुम, और अलबत्ता तहकीक, तुम जानते हो। अब यहाँ फिर बड़ी डिटेल है जिसको मैं स्किप करूंगी कि अलीमा की जगह अलीम तुम क्यों आ गया। अलीम तुम जानते हो, बस यहाँ इतना समझ लीजिए कि मदीना में जो लोग नबी सल्लम के सामने मौजूद थे उनको भी, और बाकी भी लोग जो इस वाक्य से थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं उनको कहा गया तुम ये वाक्य खूब अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के बनी इसराइली अगर आप किसी से मिले और कहें ना कि वो याद है बंदरों वाला वाक्य, तो कहेंगे वी डोंट नो। आज उनकी किताब में इस वाक्य को पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया गया। ये कहा गया, इशारे मिलते हैं, हजरत दाऊद के ये दौर का वाक्य है ना, तो कहते हैं हाँ किसी की नाक से खून निकल आया था और उनको कुछ फिंसियाँ निकल आई थी, यानी उन्होंने ये बंदरों का जिक्र ही ख़त्म कर दिया। तो तो अल्लाह ताला शिद्दत दे रहे हैं, नहीं वलकद आलिम, तुम जानते हो, आई नो दिस, यू नो दिस। जैसे कभी बच्चा झूठ बोले ना, तो आप क्या कहते हैं, बेटा मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आपकी बुक किधर है, जाए लेकर आए। बच्चे कभी बड़े बनना चाहते हैं ना, हमारे सामने होशियारी करें, तो हम उनके साथ यही शिद्दत वाला अंदाज करते हैं। तो कहा तुम जानते हो किनको, अल्लज़ी ना तदो, वो लोग जिन्होंने इतदा किया, या फिर वही लफ्ज़ ता है, बाब इफ्तियाल जब आता है ना तो शिद्दत आ जाती है। असल लफ्ज़ इसके रूट में क्या है, इतदा के ऐन दाल वो अदूब, तो ता इसमें अब रूट की नहीं है। अगर ये लफ्ज आपको आ गया तर्जमे में तो ता नहीं है, दाल है, ऐन दाल वो इसका रूट होता है, भागने का मानी जो कि पीछे बताया था। तो यहां तुम जानते हो, मिनकुम तुम में से, तुम में से क्यों का, क्योंकि नबी सल्लम के दौर तक के जो यहूद थे ना वो जानते थे ये वाक्या, और वो अपने आप को इस चीज से रिलेट करते थे। फिर सबती, सब के मामले में लफ्ज सब्त क्या है, सबता कहते हैं काटने को। सूरत नबा में क्या आता है, वजालन लैला लिबासा वजालन नहारा माशा वजालन नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को सुबात बनाया। सुबात क्या होता है, काटना। नींद के साथ ही क्या होता है, सारी एक्टिविटीज कट जाती हैं, फिर उसी से सुकून और आराम है। तो यौम सब्त क्या है, हफ्ते का दिन था जिसमें यहूद के लिए किसी काम के करने की इजाजत नहीं थी। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने दुनिया में हम सबको जिस काम के लिए भेजा ना, वो क्या था, उसके बंदे बनकर उसका पैगाम आम करें, साथ ही हमारी जिस्मानी ज़रूरतें लगा दी, खाना पानी। होने क्या लगा कि लोग उन चीज़ों को पूरा करने में उस मकसद को भूलने लगे। तो अल्लाह ताला ने हफ्ते का एक दिन रख दिया हर कौम के लिए, जुमा। यहाँ नोट कीजिएगा, इब्तदा में जुमा था, ये सूरत हदीद में हम जाके पढ़ेंगे तो वो यहाँ अभी समझ लीजिए। अल्लाह ने जुमा दिया था, जब यहूद का दौर आया ना तो इनकी आदत है, असल में कुछ की आदत होती है, नहीं अपनी मर्जी चलानी है, नहीं 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 जुमा नहीं ठीक, भाई चलो बोलो क्या चाहते हो, तुम बोलो तुम क्या चाहते हो, हफ्ता ठीक है। इन्होंने खुद चूज किया हफ्ते का दिन। थोड़ा आगे गए तो नसारा की बारी है, इन्होंने कहा नहीं हमें हफ्ता नहीं चाहिए, ये यहूद का दिन था, फिर हम इतवार ले लेते हैं। उम्मते मुस्लिमा ने उस हुक्म को एज इट इज लिया कि जुमे का दिन, ये क्या कहलाता है, होली डे। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा होली डे, हम बोलते हैं सारे हॉलीडेज चल रही हैं, लफ्ज होली क्या होता है भाई, होली रिलीजियस डे। और जो होली डे वाले दिन फजर की नमाज भी ना पढ़े, क्योंकि आज बच्चों को तो छोड़ने जाना नहीं था, तो फजर कौन पढ़ता, सुबह 9 बजे पढ़ लेंगे क्योंकि होली डे। यानी इबादत का दिन होली डे, रिस्पेक्टफुल डे, उसी दिन इबादत कम होती है, इज इट ट्रू। आप अपने वीकेंड और वीकडेज के मामूल को चेक करें ना, वीकडेज में आप बड़े पुरसकून अंदाज से चल रहे होते हैं सिस्टम पे, और वीकेंड पे दावतें, पार्टियां, मेहमान, शादी, भाग दौड़ के 2-4-6 फर्ज पढ़ाएं तो पढ़ें, वरना नहीं पढ़े जाते। वही बात हो गई, इन्होंने कहा कि हम इस दिन इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, पूरा दिन तुमने कुछ दुनिया का काम नहीं करना और तुमने इबादत करनी है। हुआ क्या, फकुल ना लहुम कूनु किरादतन खासेन, तो हमने उनसे कह दिया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। किरादा बंदर को कहते हैं, कर्द से, कर्द की जमा है ये, एप्स। बंदर दो तरह के होते हैं ना, एक मंकीज होते हैं, केप, यानी बहुत ज्यादा इंसान से मिलने वाला शक्ल होती है, तो उनको अल्लाह ताला ने खासीन का लफ्ज है ना, खसा से है, खासीन हमजा, कुत्ते या सुअर को धुतकारना, कभी चलते चलते पीछे कुत्ता पड़ जाए ना तो लोग पत्थर उठा के उसको मार दें, इस कैफियत को खसा कहते हैं, यानी धुतकारे हुए, ह्यूमिलिएटेड। फजालना हनकाल लिमा बेना यदेहा, फिर हमने इसको बना दिया इबरत उनके लिए। लफ्ज नकाल जो है ना, ये आपके लिए आज का एक खूबसूरत लफ्ज है, अरबी जुबान में अजाब देने या किसी को तकलीफ देने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं। मसलन अजाब एक लफ्ज आप बहुत पढ़ेंगे, इकाब पढ़ेंगे, बास पढ़ेंगे, नकीर है, वबाल है, मसूलात आता है, लेकिन यहाँ लफ्ज नकाल आया। तो नकाल किसको कहते हैं, लोहे के टुकड़े को, मुहार या हर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल में किसी को चलने से पाबंद और मजबूर कर दिया जाए, इसकी जमा है अनकाल। नकलुन कहते हैं बेड़ियां पहनाना, पाँव में नहीं, वो जैसे हैंडकफ्स होते हैं ना, इस तरह पाँव में भी कुछ डाल दिए जाते हैं। मुराद क्या है, किसी को इब्रतनाक सजा देना। नुकुल कहते हैं उस सजा को जो दूसरे को उस काम से रोक दे, यानी आप एक बच्चे को जरा थप्पड़ मारेंगे ना तो बाकी 2 बच्चे भी जल्दी से कापी लेकर बैठ जाएंगे कि अब कहीं थप्पड़ हमें ही ना पड़ जाए। यही लफ्ज़ सूरत तौबा में भी हम पढ़ेंगे चोरी की सजा के एंड पे, कि जजाम बिमा कसबा नकालम मिनल्ला, तो नुकुल या नकाल वही लफ्ज है जिसका यहां तذکرہ किया। मुराद यह है कि शक्लें इनकी क्यों बदली, ताकि बाद में आने वाले लोग इनकी शक्लों को देखें तो उनको इबरत आ जाए कि हमने कभी ऐसा काम नहीं करना। लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा के दो मानी है, जो इनके आगे है और जो इनके पीछे है, यानी इनसे पहले वाले लोग और इनके बाद वाले लोग। और दूसरा मानी लिमा बैन यदैहा में क्या है, इन फ्रंट, यानी जैसे आप नॉर्वे में रहते हैं तो अल्लाह ना करे कोई किसी को कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो नॉर्वे के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा चांस होगा ना उसको देखने का, वही चीज इधर आ गई। और साथ ही फरमा दिए वह मौइज़त लिल मुत्तकीन, और नसीहत है मुत्तकियों के लिए, यानी मुत्तकी इस बात से ही फायदा उठाते हैं। तो बेसिकली ये तबसरा है, वाकया इसका आगे आएगा। खुलासा ले लीजिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक बस्ती थी, हजरत ईसा से तकरीबन 973 ईयर्स बिफोर, या फिर 1013, दोनों आता है, यानी बहुत दूर का दौर है, हजरत मूसा के बाद और ईसा से पहले का दौर था। एक शहर था साहिल समंदर पर, या तो उसका नाम ईलात या ईला था, फलस्तीन के जनूब में अरब की तरफ एक इलाका है ये। बहरहाल आज भी उसको अकबा कहते हैं, वो कहना चाहिए बंदरगाह के नाम पे, आज भी वो जगह मशहूर है। वहां अल्लाह ताला ने यहूद को सब्त का हुक्म दिया था, लेकिन उस कौम का पेशा मछलियां पकड़ना थी, पानी जो था वहां। अल्लाह का हुक्म देखिए, 6 दिन थोड़ी मछलियां आती, एक दिन ज्यादा आ जाती। अल्लाह ने हफ्ते को मना किया हुआ था, बस ये आजमाइश आ गई। अल्लाह ताला ने इनको वहां पकड़कर इशारा कर दिया, और वलकद अलिम तुम में लाम ताकीद की कद तहकीक है, यानी शिद्दत से बता दिया कि तुम्हारी तारीख में ये वाकया मौजूद है, और तुम इस वाकये को देखो तो तुम्हें समझ आएगा। इंशाल्लाह सूरत आराफ आयत 163 से 165 में आप ये पूरा वाकया पढ़ेंगे कि कुछ लोगों ने क्या किया कि दरिया के किनारे गड़े खोदे, पानी की रवानी आती, मछलियां उसमें गिर जाती, पानी वापस चला जाता। जुमे की रात को जाके जाल लगाते, हफ्ते को कुछ ना करते, इतवार को जाके जाल निकालते और मछलियां पकड़ते। लोग कहते ये कहाँ से, कहते आज तो कुछ भी नहीं किया, जाल कल लगाया था, पकड़ी आज है, ये हीला था जो आज चूर दरवाजों से सूद को और रिश्वत को और हराम को और गलत चीजों को जायज करार देते हैं ना, ये उसी की मिसाल है। जब इन्होंने अल्लाह का हुक्म बदला, अल्लाह ने इनकी शक्लें बदल दी। क्या वाकई बंदर बने थे? बिल्कुल बने थे। कैसे बन गए? तो आप पूछिए कि हम इंसान कैसे बन गए? फालुल्ली मा युरीद कुन फयकून का मालिक, अल्लाह ताला ने इनको रखा, 3 गिरोह बन गए थे, जिनमें से एक ने ये गुनाह किया था, दूसरे ने किया नहीं लेकिन मना किया, तीसरे ने मना भी नहीं किया। तो कौन बचा? सिर्फ वो बचा जिसने मना किया था। इससे पता चलता है कि बुराई देखकर उसको मना ना करना, रोकना ना, ये खुद को भी फितने में डालना और खतरे में डालने का देना है। आज भी यहूद जो बहुत ज्यादा कट्टर यहूद है ना, वो हफ्ते के दिन कुछ नहीं करते। अमेरिका की कुछ बस्तियां ऐसी हैं, खासतौर पे न्यूयॉर्क में आप देखें तो वहाँ मोस्टली ज्यूज रहते हैं, इवन वहाँ के जो साइंस है ना वो भी हीब्रोज में लगे हुए हैं। तो आप हफ्ते के दिन वहाँ जाएं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। जो लोग दुकानें भी बनाते हैं ना, तो वो वर्कर कोई रख लेंगे लेकिन खुद कहते हैं वो अपने सेलफोन का बटन भी नहीं दबाते। और अल्लाह ताला ने यहाँ क्या मुझे आपको सिखा दिया कि तुम अपने आप को देखो, कहीं तुम अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार तो नहीं करते? आज के दौर में क्या वाकई मुसलमान भी ऐसा मामला करते हैं? 20 मिसालें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजों में रखा। बस आप देखिए कि जैसे उनको हफ्ते के दिन रोका था, आज मुसलमानों को जुमे के दिन का कहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे मुसलमानों के लिए वो जुमे का 1 घंटा ओनली, वो भी बवाल है। जुमा होली डे होना चाहिए था, जब से हमारे मुल्कों ने वेस्टर्न कंट्री से मिलते हुए हफ्ता इतवार को करते हुए अपने मुल्कों में जुमे का भी छुट्टी खत्म कर दी। आप देखिए दफ्तरों से भागते हुए आ रहे हैं बेचारे, क्या जुमा पढ़ेंगे, आधी नमाज गई वो नहीं गई। तो इसमें वो सारे वाक्यात और अहदीस आप नोट कर सकते हैं जो जुमे के दिन है। और ये हमारे करीब के असलाफ में भी ये चीज हम देखते थे कि जुमे का दिन हमारे यहाँ बहुत अहम होता था, पहले ही मस्जिदें भर जाती थीं और लोग जुमे को ईद की तरह मनाते हैं। हदीस में आता है कि जुमा हमारी ईद है। एक रिवायत है कि जो शख्स जुमे की सुबह पूछता है कि आज कौन सा दिन है, फरमाए वो बर्बाद हो गया। मतलब जुमा एक ऐसा दिन है कि मुसलमान होते हुए एक दिन पहले से तैयारी शुरू होनी चाहिए, और जो ब्रदर्स बेचारे जुमे की नमाज भी छोड़ दें, जिसने 3 जुमे छोड़ दिए अल्लाह उसके दिल पे कलक लगा देता है, मोहर लग जाती है, यानी फिर अल्लाह की बात समझ ही नहीं आती। तो आज हम सबको भी इस बारे में देखने और सोचने की जरूरत है। आप देखिए कि जोहर के चार फर्ज होते हैं ना, जुमे के दो हैं, दो किधर गए? खुतबा सुनो। ये जो खुतबा है ना, ये नमाज का हिस्सा है। तो जो खुतबा नहीं सुनते वो क्या करते हैं? और याद रखिए, हर मजहब वालों ने अपने मुकद्दस दिन का एहतमाम किया, उसको अपनी शिनाख्त बना लिया। इवन इसराइल की हुकूमत, जो यहूदी कौम है, आज भी हफ्ते के दिन कोई काम करना पसंद नहीं करते। आप पूरे यूरोप में देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में संडे क्या है? क्यों संडे को आपकी ये दुकानें नहीं खुलती? उनको अपने दिन की रिस्पेक्ट है। आज हम मुसलमान अपना दिन छोड़ के उनका लेके बैठ गए। आज हमारे मुल्कों में भी सैटरडे संडे छुट्टी है और जुम्मे को बहुत सारी जगहों पे दुकानें खुलती हैं। तो याद रखिएगा कि इबादत का नूर खत्म हो जाता है। उस काम में बरकत नहीं, उस वक्त में बरकत नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दूसरी बात पता चलती है कि एक तो खुलेआम हुक्म को इनकार करना, और दूसरा क्या है कि हुक्म तो वही रखना लेकिन उसको अपनी मर्जी की शक्ल दे देना। ये चीज़ अल्लाह ताला ने हम सबको बता दी। आज हम मुसलमानों पे जो अल्लाह की तरफ से पकड़ है, उसकी वजह क्या कि हमने तो हर मैदान में अपने आप को पीछे कर दिया। फिर इस पे बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं कि फिर हराम में इतनी कशिश क्यों अल्लाह ने रख दी अगर हराम है? नंबर एक इम्तिहान है, कशिश ना होती तो इम्तिहान कैसे होता? दूसरी बात है, जो फितरत सलीमा के लोग होते हैं ना, उनको कशिश नहीं लगती। उनको गाने और ये उल्टी सीधी हरकतों में, वो कहते हैं क्या बेवकूफ़ी है, उसमें मज़ा उनको ही आता है जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी होती है। और तीसरी बात, जो काम ज्यादा करेंगे वो आसान होगा। गुनाह का काम ज्यादा करेंगे आपको उसमें मजा आएगा, नेकी का करेंगे उसमें मजा आएगा। और फिर एक और चीज करके आखिरी वाक्य हमारे इस सबक का, उसका खुलासा बस इस रुकू में, अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, कि बनी इसराइल ने हर मुमकिन तरीके से अल्लाह को नाराज करना चाहा। मैं तो बस इतनी सी बात समझी अपनी इस सारी पढ़ने पढ़ाने के दौरान।